तो आप बताओ क्या करना है, तुम क्या सोचते हो बेटा? बलवंत मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा। उनके सामने वेद और मानवी दोनों बैठे थे। मानवी वहां खामोशी से बैठी थी। चाहे जो हो जाए, मैं मानवी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, ये मेरे बेटे के को हर बार खतरे से निकाल लेती है। बलवंत मेहरा ने मुस्कुराकर मानवी के सिर पर हाथ रख, आप ऐसा कहकर मुझे पराया कर रहे हैं डैड, मानवी बोली। मेरा वेद से और आपसे सभी से एक रिश्ता है, ये मेरे पति होने के साथ साथ मेरी बेटी के पिता भी हैं, और फिर तकदीर जब इन पर कोई खतरा आता है तो शायद खुद भी खुद मुझे इनके पास भेज देती है। मैं चाहता था कि मेरी फैमिली हमेशा एक साथ रहे, बलवंत ने कहा, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। बलवंत मेहरा अपने दोनों भाइयों के साथ रहना चाहता था, वो खुद को बड़ा मानता था और उसे लगता था कि वो अपनी फैमिली को एक साथ रख सकता है। इसके कारण उसके दोनों भाई और उनके बच्चे सभी एक ही घर में एक साथ रहते थे। मगर ऐसा करने से मैंने अपने ही बेटे को खतरे में डाल दिया। मेरा खुद का भाई रमेश मेहरा अब मेरे बेटे की जान पर नजर गड़ाए हुए हैं। मैंने कभी किसी में फर्क नहीं किया, मगर जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। जो शुएज मेरे पास हैं मुझे विरासत में मिले हैं। आप इस मेरे और वेदिका के शेयर मिलकर सबसे ज्यादा बनते हैं। अगर मैं मेहरा इंडस्ट्रीज को संभालता हूँ तो सबसे ज्यादा शेयर भी मेरे पास थे, और अब ये मेरे बेटे के पास जाएंगे। और मेरे बेटे में भी इतनी काबिलियत है कि वो पूरी इंडस्ट्री संभाल सके। कोई मुझे जा मेरे बेटे से ईर्ष्या करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब मुझे फैसला करना है, बलवंत मेहरा ने कहा। सबसे पहले मुझे अपनी फैमिली की देखभाल करनी है। मेरे लिए मेरी बेटा ही जिंदगी है। मेरा बेटा और उसके बाद मेरी पोती, वही मेरे वारिस बनेंगे। वेद ने धीरे से अपने डैड की ओर देखा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस टाइम हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, मगर साथ ही दीपक, सुधीर और सुधांशु, उनके बारे में भी सोचिए। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वेद को अपने भाइयों से प्यार था। वीर जैसा लापरवाह नौजवान, जिसे जो कहता था कि उसे अकेले रहना पसंद है, उसे किसी की जरूरत नहीं। मगर जब दीपक, सुधीर और सुधांशु ने उसे प्यार दिया तो उसने उनकी बन की कदर जानता था। मानवी ने कहा, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? वेद की जो हालत जो रात थी, मानवी के लिए वो देखना बहुत मुश्किल था। मानवी अभी भी डरी हुई थी। वेद ने अपनी नज़र मानवी की तरफ घुमाई। मानवी अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी फिक्र और प्रेम दोनों झलक रहे थे। वेद ने धीरे कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों फिक्र करती हो? चलो तुम दोनों बातें करो, बलवंत मेहरा ने कहा। मैं आता हूँ, बलवंत मेहरा वहां से चला गया। कमरे में वेद और मानवी अकेले रह गए। जैसे ही दोनों अकेले हुए, वेद को मानवी को छेड़ने का मौका मिल गया था। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वेद ने नरम स्वर में पूछा। हाँ बिल्कुल, मानवी ने उत्तर दिया। तो और किसकी फिक्र होगी? मानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किसी नहीं, सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए मेरी बीवी को, वेद बोला। वेद ने अपनी आवाज में हल्की गंभीरता लाते हुए पूछा, मतलब क्यों फिक्र हो रही है? मानवी ने उसकी ओर देखा, फिर उसने देखा कि वेद मुस्कुरा रहा था। ये कैसा सवाल हुआ? आप मेरे पति हैं, मुझे आपकी फिक्र होनी चाहिए, सीधी सी बात है, मानवी ने कहा। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया था वेद की बात पर। सही बात है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमें एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? वेद बोला। जब आपको पता है तो मुझसे पूछते क्यों हैं? मानवी ने हल्के गुस्से के साथ कहा। वेद ने उसकी ओर देखा मुस्कान के साथ। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी प्यार और फिक्र की एक मीठी खनक थी। तो ठीक है, मेरे पास जाकर बैठो, वेद बोला। मानवी अपनी जगह से खड़ी हुई, उसकी आंखों में हल्की झिझक और दिल में बेचैनी थी। वेद ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसकी आवाज में गंभीरता और हल्की गर्माहट दोनों थी। यार, मरने से पहले एक बार तो कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, वेद ने फुसफुसाया। मानवी ने पल भर कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उसके हाथ खुद बखुद उसके मुंह पर चले गए। वेद का इस तरह से अपने मौत के बारे में कहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ऐसा मत कहो, मानवी ने कहा, इतना ड्रामा की जरूरत नहीं, मैं आपकी सारी बातें ऐसे ही मान लूंगी, मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बस गले लग जा, उसने फुसफुसाया। मानवी मुस्कुराई और अपने चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वेद ने भी उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें मानवी के बालों में गुम हो रही थीं और उसके हाथ मानवी की पीठ पर हल्के हल्के फिसलने लगे। मैं सोच रहा था अभी वैसे टाइम क्या हुआ है, वेद ने धीरे पूछा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे हर सवाल में प्यार छुपा हो। मानवी ने उसकी आंखों में देखा और अपना चेहरा ऊपर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। सुबह का टाइम है, मानवी ने कहा। मानवी को लगा कि नशे की वजह से वेद को टाइम का ही नहीं पता। कोई कमरे में तो नहीं आएगा, उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन उसके शब्दों में हल्की शरारत थी। मानवी को थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि वेद क्या कहना चाह रहे थे। डैड भी कह चुके हैं कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने आपको रेस्ट करने को कहा है, शायद अभी कोई नहीं आएगी, जा, मानवी ने कहा। तो शायद हम चांस ले सकते हैं, वेद बोला। मानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस चीज का? मानवी ने धीरे से उसका सीना छोड़ा, लेकिन वेद ने उसे फिर से मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया। वेद ने आंखें बंद कर ली और धीमे स्वर में कहा, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, सोचता हूँ फायदा भी उठा लेना चाहिए। उसकी बातों के साथ ही उसके हाथ मानवी की पीठ पर धीरे धीरे फिसलने लगे। मानवी ने उसकी गर्माहट महसूस की, दिल की धड़कन तेज हुई और हल्की सी घबराहट के साथ उसके हाथों की नरमी को अपनाया। सन्नाटा था लेकिन वो मीठा था, केवल उनके दिल की धड़कन और सांसों की लय सुनाई दे रही थी। दोनों के बीच एक अनकहा संवाद था जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा था। मानवी ने पल भर चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो महसूस कर रही थी कि उसके दिल की हर धड़कन वेद के लिए धड़क रही थी। वेद ने धीरे धीरे उसका चेहरा अपनी ओर खींचा। मानवी ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थी और कमरे में केवल उनकी धड़कन और हल्की सांसों की लय थी। बस बस गले लग जा, वेद ने फुसफुसाया। मानवी ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वेद ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ मानवी की पीठ पर धीरे धीरे फिसलने लगे। धीरे धीरे जैसे समय थम गया हो, वेद ने मानवी का चेहरा अपनी ओर खींचा। मानवी ने हल्की झिझक के साथ आंखें बंद की। फिर एक पल के लिए केवल उनका सामना, उनके दिल की धड़कन और सांसों की लय। वेद ने धीरे धीरे मानवी के होठों को छू लिया। मानवी ने पहले पल में हल्की प्रतिक्रिया दी, फिर उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह छोड़ दिया। उनके होंठ एक दूसरे से मिले, धीरे कोमल और प्यार से भरे। वेद ने उसे और करीब खींचा। मानवी ने अपनी आंखें बंद रखी और महसूस किया कि हर स्पर्श, हर हल्की नजदीकी में उनका प्यार, उनकी फिक्र और उनका विश्वास छुपा है। कई लंबी सांसों के बाद वे धीरे धीरे अलग हुए, लेकिन आंखों की बात अब भी बाकी थी। वेद ने मानवी के माथे को हल्का सा छूकर मुस्कुराया और मानवी ने भी उसकी मुस्कान में अपना प्यार देखा। अब सब ठीक लगे, वेद ने फुसफुसाया। मानवी ने हल्की मुस्कान दी, हाँ अब सब सही है। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैली थी, लेकिन दोनों केवल एक दूसरे में डूबे हुए थे, अपने प्यार की गर्माहट और नजदीकी को महसूस करते हुए। क्या वेद पर खतरा टल गया? कहीं रमेश मेहरा का साजिश का प्लान तो नहीं है? वेदांत को रमेश मेहरा को अपनी साजिश में शामिल क्यों नहीं किया?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं, इसीलिए कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए।